संसार भर से मसीह सेवकाइयों ने मिलकर ये अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया है। इन शिक्षाओं का उद्देश्य सभी देशों की कलीसिया की सहायता की जाए, ताकि मसीही अपने विश्वास को समझें और यीशु मसीह के सेवक बन सके। शिक्षा का नाम है व्यक्तिगत सुसमाचार। शिक्षक हैं रे कम्फर्ट।
My name is Ray Comfort. I'm going to share a teaching with you called Hell's Best Kept Secret.
मेरा नाम रे कम्फर्ट है। मैं आपके साथ एक शिक्षा को बांटने जा रहा है जिसका नाम है नरक का सबसे बड़ा रहस्य।
In the late 70s, God opened an itinerant ministry to me.
1970 से खुदावन ने मेरे लिए यात्रा की सेवकाई को खोला।
As I began to travel, I found to my horror.
जब मैं यात्रा करने लगा तो मैंने देखा जो मुझे बहुत अजीब लगी।
That up to 80% of those making a decision for Christ were falling away from the faith.
कि जो यीशु मसीह के लिए अपने निर्णय लेते हैं, 80% लोग वापस चले जाते हैं अपने पुराने।
Let me bring it up to date for you.
मैं आपके लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ।
In 1991, a major denomination.
1991 में एक बहुत बड़ी जो संस्था थी।
Was able to obtain 294,000 decisions for Christ.
उन लोगों ने 294,000 लोगों के निर्णय मसीह के लिए इकट्ठे करे।
They could only find 14,000 in fellowship.
उनमें से देखा कि सिर्फ 14,000 ही लोग जो संगति के अंदर आए हैं।
In other words,
दूसरे शब्दों में कहा जाए,
they couldn't account for 280,000 of their decision.
280,000 जो लोग थे, उनका कोई वो हिसाब नहीं कर सके।
This is normal modern evangelical results.
ये जो आजकल का जो सुसमाचार प्रचार का नतीजा है ये।
I discovered this way back in the 70s.
1970 में इस बात को मैंने खोज करी।
So I made it a matter of prayer and began to study the gospel proclamations.
और मैंने इसका अपने प्रार्थना का विषय बनाया और सुसमाचार प्रचार की घोषणा का अध्ययन करना शुरू
किया। Men like Charles Spurgeon, John Wesley.
और जॉन वेस्ली और चार्ल्स स्पर्जन जैसे लोगों का अध्ययन करा मैंने।
And others that God greatly used down through the ages.
और युगों में दूसरे महान सेवकों को खुदावन ने जिनको इस्तेमाल करा है।
I found they used a principle which is almost entirely neglected by modern evangelism.
मैंने देखा कि उन्होंने एक सिद्धांत का इस्तेमाल करा जो आजकल के युग में बिल्कुल नकारा गया है।
The Bible says that the law of the Lord is perfect.
बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो है सिद्धता का परमेश्वर है।
Converting the soul.
आत्माओं को बदलने वाला।
To illustrate the function of God's law, let's look for a moment at civil law.
परमेश्वर के कानून को समझने के लिए आइए हम देखते हैं सिविल कानून।
Imagine if I said to you,
कल्पना करें अगर मैं आपसे कहता हूं,
I've got some good news for you.
आपके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूं।
Someone has just paid a $25,000 speeding fine on your behalf.
किसी ने 25,000 का आपका फाइन को भुगता दिया है जो आपने स्पीड कर लिया था गाड़ी का उसका जुर्माने के लिए।
You'd probably react by saying that's not good news.
वो आपको प्रतिक्रिया दिखाएगा, नहीं ये तो कोई खुशखबरी नहीं है।
Doesn't make sense.
इसका कोई समझ नहीं आती इस बात की।
I don't have a $25,000 speeding fine.
और मेरे को तो 25,000 का स्पीडिंग का फाइन नहीं हो सकता है।
My good news wouldn't be good news too. It'd be foolishness.
मेरी जो उसके लिए खुशखबरी होगी, उसके लिए खुशखबरी नहीं है, मूर्खता की बात होगी।
But more than that, it would be offensive to you.
इससे ज़्यादा बढ़कर उसको ठेस लगेगी, चोट लगेगी इस बात से।
Because I'm insinuating you've broken the law when you don't think you have.
और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने नहीं तोड़ा है कानून, परंतु आपको पता है कि आपने कानून को तोड़ा है।
But if I put it this way, it may make more sense.
अगर मैं इस प्रकार से कहूँ तो इससे ज़्यादा समझ आती है।
On your way to this meeting,
और ये जब मैं राष्ट्र सभा के लिए जा
रहा था, the
police,
the law,
कानून,
clocked you at going 55 miles an hour.
और आप जो 55 की स्पीड में जा रहे थे, आपको रोक दिया गया था।
Through an area set aside for a blind children's convention.
उस रास्ते में से जहाँ पर अंधे बच्चों की कन्वेंशन हो रही थी।
There were 10 clear warning signs.
रास्ते में चेतावनी के 10 निशान लगे हुए थे।
Stating that 15 miles an hour was the maximum speed.
यहाँ पर लिखा हुआ था 15 किलोमीटर की स्पीड ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए।
But you went straight through at 55 miles an hour.
आप 55 की स्पीड में लगातार आगे बढ़ते गए।
What you did was extremely dangerous.
जो आपने करा बहुत ही खतरनाक बात थी।
There's a $25,000 fine.
इसके लिए आपको 25,000 का फाइन लगा है, जुर्माना।
The law was about to take its course.
और ये कानून आपको आप पर कुछ विधि लगाने वाला था।
When someone you don't even know,
आप जिसको जानते नहीं ऐसा कोई व्यक्ति
stepped in and paid the fine for you.
आया सामने और उसने आपके लिए जुर्माना दे दिया।
You are very fortunate.
और आप बहुत किस्मत वाले हैं।
Can you see that telling you what you've done wrong first?
और आपको पहले बताया गया कि आपने क्या गलती करी गई है.
Actually makes the good news.
और ये बात आपको बता देती है कि आपके लिए खुशखबरी है.
If someone paying the fine for you makes sense.
और तभी आपको पता चलेगा कि किसी ने आपके लिए जुर्माना अदा करा है.
If I don't clearly bring instruction, you've violated the law.
अगर मैं पहले बताता नहीं हूँ कि आपने कानून को तोड़ा है.
Then the good news will seem foolishness.
वो जो खुशखबरी आपके लिए मूर्खता की बात
है. And offensive.
और आपके लिए ठोकर लगेगी.
If I clearly bring instruction, you've violated the law.
अगर मैं सबसे पहले ये आदेशों को बताऊं कि आपने कानून को तोड़ा है.
Then that good news will become good news indeed.
तब वो सचमुच जो खुशखबरी आपके लिए बन जाएगी.
And in the same way.
उसी तरीके से.
If I approach an impenitent sinner.
अगर मैं किसी पापी के पास जाता हूं.
Someone whose understanding is darkened.
जिसकी समझ बिल्कुल अंधकार में है.
And say Jesus Christ died on the cross for you.
और कहूं कि यीशु मसीह आपके लिए सलीब पर मारे गए.
It'll be foolishness to him.
उसके लिए मूर्खता की बात होगी.
And offensive to
उसके लिए ठोकर का कारण होगा.
Foolishness because it won't make sense.
मूर्खता की बात इसलिए क्योंकि उसको इस बात से समझ नहीं आ रही है.
The Bible says that.
बाइबल इस प्रकार कहती है.
Says the preaching of the cross is to them that perish foolishness.
जो नाश होते हैं उनके लिए क्रूस का जो खुशखबरी है वो मूर्खता की बात है.
And it'll be offensive to him.
उनके लिए एक ठेस का कारण होगा ठोकर.
Because I'm insinuating he's a sinner.
क्योंकि मैं जो बात बता रहा हूं कि तुम पापी हो.
When he doesn't think he is.
जब वो सोचता है कि वो पापी नहीं है.
As far as he's concerned, there's a lot of people worse than him.
बहुत सारे फरीसी ऐसे सोचते हैं और भी.
If I follow in the footsteps of Jesus.
अगर मैं अपने आप को यीशु के जूते में डाल देता हूं. इससे ज्यादा समझ आती है.
If I take the time to open up the divine law.
अगर मैं समय लेकर दैवी कानून को बताऊं.
To open up the Ten Commandments.
और दस हुक्मों को बताऊं.
And show the sinner precisely what he's done wrong.
और पापी को बताऊं कि उसने कहां पर गलती करी है.
Then when he becomes as James says.
जब वो इस बात को समझ जाता है जैसे याकूब बताता है.
Convinced of the law as a transgressor.
कि वो पापी है क्योंकि उसने कानून को शरा को व्यवस्था
तोड़ा. The good news will not be foolishness.
तो ये खुशखबरी उसके लिए मूर्खता की बात ना होगी.
It will not be offensive.
ना उसके लिए ठोकर का कारण होगी.
It will be the power of God unto salvation.
परंतु मुक्ति के लिए परमेश्वर की शक्ति होगी, सामर्थ्य होगी उसके लिए.
Now with those few thoughts in mind.
अब इन बातों को मद्देनजर रखते हुए.
By way of introduction.
एक परिचय के तौर पर.
Let's look at Romans 3 verse 19.
आइए हम देखते हैं रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसकी 19 आयत को.
We're looking at God's word.
हम परमेश्वर की वाणी की ओर देख रहे हैं.
To see what it says about the law.
कि ये व्यवस्था के बारे में क्या कहता है.
In Romans 3 verse 19.
रोमियों के पत्र 3 अध्याय उसकी 19 आयत में.
Now we know that whatsoever things the law says.
हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है.
It says to them who are under the law.
उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन में है.
That every mouth may be stopped.
इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए.
And all the world.
और सारा संसार.
Not just the Jews.
सिर्फ यहूदी ही नहीं.
That all the world.
परंतु सारा संसार.
Might become guilty before God.
परमेश्वर के दंड के योग्य है.
So one function of God's law is to stop sinners' mouths.
और ये काम है परमेश्वर की शरा का उसकी व्यवस्था का के पापियों के मुंह को बंद करना.
And leave them guilty before God.
कि वो परमेश्वर के सामने गुनाहगार है.
Following verse, Romans 3 verse 20.
और 3 का 20 रोमी 3.
Therefore by the deeds of the law.
क्योंकि व्यवस्था के कामों से.
There shall no flesh be justified in his sight.
कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा.
For by the law is the knowledge of sin.
इसलिए व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है.
So God's law tells us what sin is.
इसलिए परमेश्वर की व्यवस्था बताती है कि पाप क्या है.
1 John says sin is transgression of the law.
पहला यूहन्ना बताता है कि पाप है परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन.
Then over somewhat to Romans 7 verse 7.
और हम पढ़ते हैं रोमियों के पत्र 7 के 7.
Romans 7 verse 7 says.
रोमियों 7 के 7 कहते हैं.
Paul speaking.
पौलुस कहता है.
What should we say then?
तो हम क्या कहें?
Is the law sin?
व्यवस्था पाप है?
God forbid.
कदापि भी नहीं.
No, I had not known sin but by the law.
बन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता.
Paul says he didn't know what sin was.
पौलुस कहता है कि वो पाप को पहचानता नहीं.
Until the law told him.
जब तक व्यवस्था ने उसे बताया नहीं.
And over in Galatians 3:24,
गलाती के पत्र 3:24 में लिखा हुआ है,
says these words.
इस बातों का लिखा हुआ है,
Galatians 3:24,
गलाती के पत्र 3:24,
wherefore the law was our schoolmaster.
इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा
to bring us under Christ that we might be justified by faith.
व्यवस्था से धर्मी ठहरे.
So the law acts as a schoolmaster.
जो व्यवस्था है हमारा शिक्षक है.
To bring us to Jesus Christ.
जो हमें यीशु तक लेकर आता है.
That we might be justified through faith in His blood.
ताकि उसके लहू पर विश्वास रखने के द्वारा हम धर्मी ठहरे.
The law doesn't help us.
व्यवस्था हमारी सहायता नहीं करता.
Leaves us helpless.
वो तो सहायता ही
doesn't justify us.
हमें धर्मी नहीं ठहराता.
Just leaves us guilty before the judgment bar of Almighty God.
और हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हमें ये दोषी
ठहरा देता. The tragedy of modern evangelism.
और ये जो आजकल का जो सुसमाचार प्रचार की ये घटना ये है.
Is that around the turn of the century?
कि इस सदी के बीच में.
When it forsook the law.
जिन लोगों ने इस व्यवस्था को त्याग दिया.
And its capacity to drive sinners to Christ.
जिसके अंदर क्षमता है कि वो मसीह के पास ले आ सकता है पापियों को.
Modern evangelism had to find another reason.
आधुनिक सुसमाचार प्रचार को एक और कारण ढूंढना पड़ा.
For sinners to respond to the gospel.
ताकि पापी लोग सुसमाचार के प्रति
And the issue that modern evangelism chose.
ये जो तरीका आधुनिक सुसमाचार प्रचार ने चुना ये था.
Was the issue of life enhancement.
और ये है कि जीवन प्रदान करने का
The gospel degenerated into
सुसमाचार कितना गिरा दिया गया
Jesus Christ will give you peace
यीशु मसीह आपको शांति देंगे
joy love and fulfillment
खुशी प्रेम और आनंद की भरपूरी देंगे
Now to illustrate the unscriptural nature
और ये है कि जो परमेश्वर के वचन से अलग हटकर कुछ व्याख्या
This very popular teaching
ये बहुत प्रसिद्ध शिक्षा है
I want you to listen very carefully.
मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनिए.
Because the essence of what I'm saying pivots on this next story.
क्योंकि जो कुछ मैं अभी बता रहा हूं ये आगे आने वाली बातों से जुड़ा
हुआ. Two men were seated in a plane.
दो व्यक्ति हवाई जहाज में सफर कर रहे थे.
The first is given a parachute.
और एक को पैराशूट दी गई.
And told to put it on.
उसे कहा गया कि इसे पहन ले.
Because it would improve his flight.
इससे तेरी उड़ान बेहतर हो जाएगी.
He's a little skeptical at first.
वो पहले तो बहुत शक्की सा तो लगा.
Because he can't see how wearing a parachute in a plane could possibly improve the flight.
क्योंकि वो सोच रहा था कैसे पैराशूट उसकी उड़ान में बेहतरीन बात लेकर आएगी.
After time, he decides to experiment.
थोड़ी देर के बाद उसने सोचा चलो तजर्बा करके देखते हैं.
And see if the claim's true.
देखते हैं कि इनका दावा सही है.
As he puts it on,
जब उसे पहन लेता है,
he notices the weight upon his shoulders.
वो देखता है कि उसके कंधों पर बहुत बोझ आ गया है.
And he finds he has difficulty in sitting upright.
उसे सीधा बैठने में मुश्किल आ रही है.
However, he consoles himself.
फिर अपने आप से कहता है थोड़ा.
The fact he was told the parachute would improve the flight.
कि उसे कहा गया था कि ये पैराशूट से उसकी जो उड़ान है बेहतरीन हो जाएगी.
So he decides to give the thing a little time.
उसने सोचा थोड़ी और इंतजार करके देखते हैं.
As he waits,
जब वो इंतजार करता है,
he notices that some of the other passengers are laughing at him.
देखता है कि दूसरे यात्री उस पर हंस रहे हैं.
Because he's wearing a parachute in a plane.
क्योंकि वो हवाई जहाज में बैठकर पैराशूट पहने हुए.
He begins to feel somewhat humiliated.
और उसे बहुत मूर्खता महसूस हुई, हीन भावना महसूस
हुई. They begin to point and laugh at him.
उसकी और उंगल उठाकर उस पर हंसने लग गए वो लोग.
He can stand it no longer.
अब वो खड़ा भी नहीं हो सकता है.
He slinks in his seat.
वो नीचे अपनी सीट पर थोड़ा
पैराशूट
उसे उतार देता
है पैराशूट to the floor.
उसको नीचे फेंक
देता है. Disillusionment and bitterness fill his heart.
और उसके अंदर ये शक और करवाट भर जाती है
because as far as he was concerned he was told an outright lie
क्योंकि जब तक जो बात उसे कही गई थी वो झूठ
निकली the second man is given a parachute
दूसरे व्यक्ति को भी पैराशूट दी गई
but listen to what he's told
अब देखिए उसको क्या कहा गया था
he's told to put it on
उसे कहा पहन लो इसे
because at any moment he'd be jumping 25,000 feet out of the plane
क्योंकि कभी भी और किसी भी वक्त हम जहाज में से 25,000 की दूरी से नीचे हम उछलेंगे
he gratefully puts the parachute on
वो बड़ी कृपा से इसे पहन लेता है
he doesn't notice the weight upon his shoulders
और अपने कंधों पर उसे बोझ महसूस नहीं करता
no that he can't sit upright
और अब वो सही तरीके से बैठ भी नहीं सकता
his mind is consumed with the thought
उसका दिमाग जो है उन विचारों से भरा हुआ है
what would happen to him if he jumped without that parachute
जब हम पैराशूट के साथ नीचे गिरेंगे तो कैसे होगा हमारे साथ
let's analyze the motive and the result
और अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है।
Of each passenger's experience.
ये दोनों जो यात्री हैं उनके तजुर्बे से।
The first man's motive for putting the parachute on.
जो पहला व्यक्ति था जिसको कहा था पैराशूट पहनने के लिए,
was solely to improve his flight.
और उसको बताया गया कि इससे उसकी उड़ान बेहतर हो जाएगी।
The result of his experience.
और उसके जो तजुर्बे का नतीजा
क्या निकला? Was that he was humiliated by the passengers.
मूर्खता की बात हुई, दूसरे लोग
हंसने लगे।
और उसको कड़वाहट से भर गया वो, जिन लोगों ने उसे पैराशूट दी थी उनकी तरफ वो कड़वाहट से भर गया।
As far as he's concerned,
जैसे उसने सोचा था,
it'll be a long time
कि एक लंबा समय होगा
before anyone gets one of those things on his back again.
कि वो फिर दोबारा इस तरह की
पैराशूट पहने। The second man put the parachute on.
दूसरे व्यक्ति ने जो पैराशूट पहनी
solely to escape the jump to come.
आने वाले जो खतरा है उस उछाल लगाने वाले खतरा से बचने के लिए थी।
And because of his knowledge of what would happen to him without it,
क्योंकि उसे पहले बताया गया था उस ज्ञान के कारण के क्या आगे होने वाला है उसके कारण।
He has a deep-rooted joy and peace in his heart, knowing that he's saved from sure death.
क्योंकि उसके हृदय खुशी आनंद से भरा हुआ था कि उसकी जो मौत है जल्दी नहीं होगी।
This knowledge gives him the ability.
ये जो ज्ञान था उसको एक योग्यता देता है।
To withstand the mockery of the other passengers.
कि दूसरे लोगों के जो मूर्खताई या हंसी के सामने वो खड़ा
रह सके। Attitude toward those who gave him the parachute.
और उनके प्रति एक अच्छा रवैया जिन्होंने उसे पैराशूट दी थी।
Is one of heartfelt gratitude.
कि उसका हृदय शुक्रगुजारी के
Now
साथ।
Now listen to what the modern gospel says.
और जब देखें गॉस्पल यीशु समाचार क्या कहता है।
It says, "Put on the Lord Jesus Christ."
वो कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो।
He'll give you love, joy, peace, fulfillment.
और वो आपको आनंद, खुशी और भरपूरी देगा।
And lasting happiness.
और ना खत्म होने वाली खुशी।
So the sinner responds.
और जब पापी इसके प्रति प्रत्युत्तर देता है।
In an experimental fashion.
और उसे वो तजुर्बा करना चाहता है अपने जीवन में।
Puts on the savior to see if the claims are true.
वो पहन लेता है और देखता है कि ये सही है या नहीं।
And what does he get?
और उसे क्या मिलता है?
The promised temptation, tribulation, and persecution.
और उसे सताव मिलता है। उसे बहुत सारे लोग परेशानी में डाल देते हैं।
The other passengers mock him.
और दूसरे यात्री उस पर हंसी उड़ाते हैं।
So what does he do?
इसलिए वो क्या कहता है?
He takes off the Lord Jesus Christ.
यीशु मसीह को उतार देता है वह।
He's offended for the word's sake.
जो शब्द उसे कहे गए उसे ठेस लगती है, ठोकर लगती है।
He's disillusioned and somewhat embittered.
वो शक से भर जाता है और कड़वाहट से भर जाता
है। Quite rightly so.
और इसी तरीके से हम
He was promised peace, joy, love, fulfillment and lasting happiness.
और उसे कहा गया था कि उसे खुशी मिलेगी, ना खत्म होने वाला आनंद, इस तरह की शांति मिलेगी।
All he got was trials and humiliation.
परंतु उसे परीक्षा सामने आई, लोग उसे मूर्ख समझे।
His bitterness is directed at those who gave him the so-called good news.
जिन लोगों ने उसे खुशखबरी दी, उनके प्रति उसका हृदय कड़वाहट से भर गया।
His latter end becomes worse than the first.
उसकी हालत पहले से भी बेकार हो गई।
Another inoculated and bitter backslider.
और भी ज्यादा कड़वाहट से भर गया और पीछे हट गया कलाम से।
Saints, instead of preaching that Jesus improves the flight,
इसके बजाय कि उनको ये प्रचार करें कि यीशु मसीह आपकी उड़ान
बेहतर करेगा, we should be warning the passengers they're going to have to jump out of the plane.
यात्रियों को इस बात की चेतावनी दें कि उनको कभी भी छलांग लगानी पड़ेगी, उछलना पड़ेगा यहाँ से.
The disappointed man wants to die.
क्योंकि ये नियुक्त करा गया है कि मनुष्य को एक बार मरना है.
And after this, the judgment.
उसके बाद न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा.
And when a sinner understands the horrific consequences.
जब ये पापी इस प्रकार की भयानक बात को समझ जाता है.
Breaking God's law,
वो परमेश्वर की जो व्यवस्था को तोड़ता है,
then he will flee to the Savior,
तब वो मुक्तिदाता की तरफ भागेगा,
solely to escape the wrath that's to come.
आने वाले उस जो क्रोध से बचने के लिए,
if we're true and faithful witnesses,
और उसके लिए वो गवाही देगा.
That's what we should be preaching.
वही बात हमें प्रचार करनी है,
that there's wrath to come.
कि आने वाले क्रोध से बचें.
That God commands all men everywhere to repent.
कि परमेश्वर चाहता है सब जगह मनुष्य मन फिराएं.
Because he's appointed a day in which he'll judge the world in righteousness.
क्योंकि समय नियुक्त करा गया है कि पूरे संसार का न्याय होगा.
See, the issue isn't one of happiness.
और इसके बजाय कि वो शांति खुशी की तरफ.
It's one of righteousness.
और वो धार्मिकता की ओर.
Doesn't matter how happy a sinner is.
पापी कितना खुश है ये नहीं.
How much he's enjoying the pleasures of sin for a season.
और कितना समय वो पाप का लुफ्त उठा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
Without the righteousness of Christ,
मसीह की धार्मिकता के बिना,
he'll perish in the day of wrath.
वो क्रोध के समय में नाश हो जाएगा.
Scripture says,
वाणी कहती है
Richest prophet not on the day of wrath.
कि उस समय पापी फलवंत नहीं होगा जब क्रोध का समय
आएगा. Righteousness delivers from death.
परंतु ये जो धार्मिकता हमें मौत से छुटकारा देती है.
Peace and joy are legitimate fruits of salvation.
शांति और आनंद ये जो है मुक्ति के फल हैं.
But it's not legitimate to use these fruits.
परंतु जब तक वो इसमें आता नहीं, वो ये फलों को खा नहीं सकता.
As a draw card for salvation.
जब तक वो मुक्ति को ग्रहण नहीं कर लेता है.
If we continue to do so.
अगर हम लगातार ऐसा करते जाएंगे.
Sinners will respond with an impure motive.
कि ये जो पापी है, वो गलत निशाने से प्रत्युत्तर देंगे.
Lacking repentance.
और गलत तरीके से मन फिराएंगे.
Now, can you remember why the second passenger had joy and peace?
आप देखते हैं कि दूसरा जो यात्री था कितना उसके अंदर खुशी और शांति थी?
It was because he knew that parachute was going to save him from sure death.
क्योंकि उसे मालूम था कि ये जो पैराशूट थी उसे समय से पहले मरने से बचाएगी.
And as a believer,
विश्वासी होने के नाते,
I have joy and peace in believing.
और हम विश्वास करते हैं तो उसी कारण हमें शांति और खुशी मिलती.
Because I know that the righteousness of Christ.
क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह की धार्मिकता
is going to deliver me from the wrath that's to come.
मुझे आने वाले श्राप से बचाएगी.
Now that thought in mind, let's take a close look at an incident on board the plane.
इन दोनों विचारों को मन में रखते हुए आए हम इस यात्रा की ओर ध्यान करें.
We have a brand new stewardess.
वहां पर एक होस्टेस साथी जो उसका नया नया दिन है.
She's carrying a tray of boiling hot coffee.
वो एक बहुत गर्मा गर्म कॉफी लेकर आ रही है.
It's her first day.
उसका ये पहला दिन है काम पर.
So she wants to leave an impression on the passengers.
और इसलिए यात्रियों पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहती है.
And she certainly does.
और वो वैसा ही करती है.
Because as she's walking down the aisle,
जब वो वहाँ से आ रही होती,
she trips over someone's foot.
और किसी के पांव से उसे ठोकर लगती है.
And slops that boiling hot coffee.
और गर्मा गर्म जो कॉफी होती है,
all over the lap of our second passenger.
दूसरे यात्री के गोद में सारी गिर जाती है गर्मा गर्म कॉफी.
What's his reaction as that boiling liquid hits his tender flesh?
उसके इस बदन पर, उसके मांस पर ये गर्म-गर्म कॉफी लगती तो उसका प्रतिक्रिया कैसी होती है?
Does he go, that's hot?
वो ये कहता है कि हाँ, बहुत गर्म है.
Oh yeah, he feels the pain.
उसे बहुत दर्द होता है.
But then does he rip the parachute from his shoulders?
क्या वो अपनी पैराशूट अपने कंधों से उतार देता है?
Throw it to the floor?
क्या वो जमीन पर फेंक देता है?
And say the stupid parachute.
कहता है ये मूर्ख है ये जो पैराशूट.
No.
नहीं, ऐसा नहीं करता.
Why should he?
क्यों ऐसा करेगा वो?
He didn't put the parachute on for a bit of flight.
उसने थोड़ी देर के लिए पैराशूट नहीं पहनी थी.
He put it on to save him from the jump to come.
आने वाले खतरे से बचने के लिए ही उसने पैराशूट पहनी थी.
If anything, the hot coffee incident.
अगर ऐसे गर्म कॉफी का कोई घटना हो ही जाती है तो
causes it to cling tighter to the parachute.
और भी ज्यादा पैराशूट को समेट लेता है.
And he even looked forward to the jump.
आने वाले खतरे के लिए इंतजार करता रहता है.
Now, if you and I have put on the Lord Jesus Christ for the right motive,
अगर हमने सही मकसद है यीशु मसीह को पहन लिया है,
to flee from the wrath that's to come,
आने वाले क्रोध से बचने के लिए,
when tribulation strikes,
जब कलेश आते हैं हमारे जीवन,
when the flight gets bumpy,
जब ये जैसे सताव आते हैं,
we won't get angry at God,
हम लोग परमेश्वर पर क्रोधित नहीं होंगे,
we won't lose that joy and peace,
हम अपने आनंद खुशी को गवाएंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे,
why
should we? हम क्यों करेंगे ऐसा?
We didn't come to Jesus for a happy lifestyle.
हमने यीशु को इसलिए ग्रहण नहीं करा के एक खुशी का जीवन व्यतीत करें.
We came to flee from the wrath that's to come.
आने वाले खतरों से, आने वाले क्रोध से बचने के लिए उसे पहना है.
And if anything, tribulation drives the true believer closer to the Savior.
अगर कोई ऐसा क्लेश आता है, सताव आता है, तो हम उस मुक्तिदाता के करीब हो जाते हैं.
Sadly, we have multitudes of professing Christians.
हमने बहुत सारे ऐसे अंगीकार करने वाले मसीहों को बना लिया है.
Lose their joy and peace when the flight gets
जब
bumpy.
उनका वो बहुत सफर थोड़ा कठिन होता है, वो अपना सारा आनंद खुशी खो देते हैं. क्यों?
Why? Because they're the product of modern evangelism.
क्योंकि ये जो आधुनिक सुसमाचार का नतीजा है, उपज है.
They came lacking repentance, without which you cannot be saved.
अगर आपका पश्चाताप सही नहीं है तो आपका जो है आनंद खुशी देर तक बनी नहीं रहेगी.
You see, there's no way I'm going to take a cure.
देखिए, मैं किसी भी तरीके से दवाई नहीं लूँगा.
Unless I first admit I've got the disease.
जब तक मैं पहले ये ग्रहण नहीं कर लेता कि मुझे कोई बीमारी है.
Why should I take a cure?
मैं क्यों दवाई लूँ?
If I don't believe I've got the disease.
जब तक मैं विश्वास ही नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी है.
The law convinces me I'm diseased.
पहले मुझे इस बात को कायल करें कि मुझे बीमारी है.
So that I'll accept the gospel.
ताकि मैं उस सुसमाचार को ग्रहण कर सकूं.
Now, biblical evangelism,
ये जो बाइबल का सुसमाचार है,
is always
हमेशा के लिए
law to the proud,
ये जो घमंडी है उसे नीचा करता है,
and grace to
और
the humble,
जो नम्र है उसके लिए कृपा होती है, अनुग्रह होता है.
Never will you see
कभी
Jesus,
आप यीशु को ऐसा नहीं देखेंगे
giving the gospel,
सुसमाचार देते हुए,
the cross,
yes, क्रूस को,
the grace of our God, to a proud, arrogant, self-righteous
किसी भी घमंडी स्वधर्मी पापी को.
No, with the law, he breaks the hard
क्योंकि
heart.
ये जो कानून से है कठिन हृदय टूट जाते हैं.
And with the gospel, he heals
फिर
the broken heart.
वो सुसमाचार से उस हृदय को शांत करता है, इलाज करता है,
Why?
चंगा करता है.
Because he always did those things that
pleased
the Father.
वही करता है जो पिता को प्रसन्न होता है.
God resists the proud.
परमेश्वर घमंडी का सामना करता है.
And gives grace to the humble.
नम्र है उसको कृपा देता है.
Everyone who is proud
और
of
अगर हृदय में घमंड है तो
is an abomination to the Lord.
सामने घृणित बात है वो.
Jesus told us for whom the gospel is for.
यीशु ने पहले बताया कि सुसमाचार किसको चाहिए.
He said the spirit of the Lord is upon me.
परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है.
Because he has appointed
क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है.
To preach the gospel
का प्रचार करूं
to the
गरीबों को,
the broken hearted,
टूटे हृदय वालों को,
the captives,
जो बंधुए हैं,
and the blind,
और अंधों को.
Now they are spiritual statements.
ये एक आत्मिक कथन है.
The poor means those who are poor in spirit.
और गरीब का मतलब है जो आत्मा में गरीब है.
The broken hearted are the contrite ones, those that mourn.
टूटे हृदय वाले जो पिसे हुए हृदय से, जो जिनका मन टूटा हुआ है.
The captives are those of whom Satan has taken captive.
और ऐसा हैं बंधुए जिनको पाप ने अपने जाल में डाल दिया. और देखो अंधे वो हैं जिनको शैतान ने अंधा कर रखा है.
Only the sick need a physician.
और ये जो बीमार है उनको फैसला करना है.
And only those who are convinced of the disease,
जिनको बीमारी के बारे में पता है उनको फैसला करना है,
will accept the cure.
कि उनको इलाज चाहिए.
Now, Luke 10:25.
अब लुका 10 की 25 में लिखा हुआ है.
We see Jesus doing this.
हम देखते हैं कि यीशु ऐसा करते हैं.
Giving the law to the proud.
वो घमंडियों को कानून देते हैं, व्यवस्था देते हैं.
Now let me paraphrase this somewhat for you.
आपके लिए मैं इसको अपने शब्दों में बताता हूँ.
In Luke 10:25, a certain lawyer.
लुका 10 की 25 में एक व्यवस्था का मानने वाला.
Stood up and he tempted Jesus.
खड़ा होकर यीशु की परख करता है.
Here we have a professing expert in God's law.
और यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था के घोषणा करने वाला एक
standing up,
खड़ा होता है,
and tempting the Son of God.
परमेश्वर के पुत्र की परीक्षा करना चाहता है.
He was proud, arrogant, and self-righteous.
वो बहुत घमंडी और स्वधर्मी व्यक्ति बनना चाहता है.
So Jesus gave him the law.
फिर यीशु उसको व्यवस्था देते हैं, कानून.
He said, "What is written in the law? What is your reading of?"
कहते हैं, व्यवस्था में क्या लिखा? तुम क्या पढ़ते हो?
And he said,
वो कहता है,
"You shall love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength."
कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे मन, हृदय, प्राण से प्रेम कर.
He said, "You shall love your neighbor as yourself."
वो कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर.
And then Jesus said,
फिर यीशु कहते हैं,
"This do and you shall live."
बोले ऐसा करो तो तुम जीवित रहोगे.
And then the Bible says,
तो बाइबल कहती है,
"But he willing to justify himself."
वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था.
Said to Jesus,
यीशु को कहता है,
"Who is my neighbor?"
मेरा पड़ोसी कौन है?
The Living Bible brings out more clearly.
Living Bible का अनुवाद इसको और भी स्पष्ट करता है.
The effect of the law on that man.
उस व्यक्ति का व्यवस्था से क्या लेना देना?
See, the man wanted to justify.
वो व्यक्ति अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था.
His lack of love for some kinds of people.
पर कुछ लोगों के लिए उसका प्रेम सही नहीं था, कम था.
So he said to Jesus.
यीशु से कहता है,
Which neighbors?
मेरा पड़ोसी कौन है?
See, he didn't mind Jews.
यहूदियों से उसे कोई समस्या नहीं थी.
But he didn't like Samaritans.
परंतु सामने उसे अच्छे नहीं लगते थे.
So Jesus told him the story.
इसे यीशु उसे कहानी सुनाते हैं.
Of what we call.
जिसे हम कहते हैं.
The good Samaritan.
अच्छा सामरी.
Who was not good at all.
वो अच्छा नहीं था.
When he loved his neighbors himself.
जो अपने पड़ोसी से प्रेम तो करता था.
He merely obeyed the basic requirements of God's law.
परमेश्वर के उस व्यवस्था को पूरा करता है वो. आगे मानता है.
and the effect of the essence of the law,
उसका जो प्रभाव है उस आज्ञाकारिता
है, the spirituality of the law,
जो व्यवस्था की आत्मिकता है,
what the law demanded in truth,
जो के व्यवस्था कहती है सच्चाई,
was that it stopped that man's mouth,
उस व्यक्ति के मुंह को बंद कर देती है.
He didn't say another word.
और कोई शब्द कह नहीं पाता है.
Because he didn't love his neighbor to that degree.
क्योंकि वो अपने पड़ोसी से इतना प्रेम नहीं करता था.
Remember, the law was given to stop every mouth.
याद है कि ये शरीयत या व्यवस्था दी गई थी हर एक मुंह को बंद करने के लिए.
And leave the whole world guilty before God.
सारे संसार को परमेश्वर के सामने दंडित ठहराने के लिए.
We see a similar thing in Luke 18, verse 18.
वही बात लूका 18:18 में लिखी हुई है.
We won't turn to it for the sake of time.
समय बचाने के लिए हम उसे नहीं पलटाएंगे उसकी तरफ.
But the rich young ruler said he had kept the commandments.
और परंतु वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो सरदार था वो कानून को ये व्यवस्था को मानता
था. So Jesus used the first of the ten commandments.
यीशु मसीह पहली दस सुख में से पहली आज्ञा को इस्तेमाल करते हैं.
I am the Lord your God.
मैं तुम्हारा परमेश्वर प्रभु हूँ.
You shall have no other gods before me.
मेरे सामने कोई और देवी देवता ना होने पाए तेरे सामने.
To show this man that his God was his money.
इस व्यक्ति को दिखाने के लिए कि उसका परमेश्वर उसका पैसा था.
You cannot serve God and mammon.
आप परमेश्वर और पैसे की सेवा नहीं कर सकते हैं दोनों एक साथ.
So we see Lord of the proud.
हम देखते हैं घमंड का बोझ.
And then we see grace being given to the humble.
तब हम देखते हैं कि दीन मन लोगों को अनुग्रह दिया गया है.
In the case of Nicodemus.
निकोदेमस के बारे में हम देख लेते हैं.
He was a humble Jew.
वो एक नंबर यहूदी था.
Who acknowledged the deity of the Son of God.
जो परमेश्वर के पुत्र की परमेश्वरता को समझ जाता है.
He was a teacher in Israel.
वो इस्राएल में एक शिक्षक था.
So he obviously knew the law.
और इसलिए वो व्यवस्था को जानता था.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
क्योंकि ये व्यवस्था हमारा शिक्षक है जो हमें मसीह के पास लेकर आती है.
Same with the case of Nathanael in John 1.
और यही यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में नथानियल के साथ.
Who was an Israelite?
जो एक इस्राएली था.
Brought up under the law.
जो व्यवस्था के अधीन में पला बढ़ा.
He was an Israelite indeed.
और एक सत्य.
Not just in word.
सत्य का वो एक इस्राएली था कामों में.
And there was no deceit in his heart.
परंतु उसके अंदर व्यवस्था का एक बीज बोया हुआ था.
And the law was a schoolmaster to bring this godly Jew to Christ.
व्यवस्था एक शिक्षक है जो हमें मसीह यीशु के पास लेकर आती है.
Same with the Jews on the day of Pentecost.
पेंटिकोस्त के दिन ऐसे यहूदियों के साथ हुआ.
These were devout Jews.
ये भक्ति में यहूदी थे.
From every nation under heaven.
स्वर्ग के नीचे हर एक जो देश है.
Therefore, ate, drank, and slept God's law.
और जो परमेश्वर के व्यवस्था को ले लेते हैं.
And the law was a schoolmaster to bring 3,000 to Christ.
वो व्यवस्था उस दिन ऐसे शिक्षक थी जो 3,000 लोगों को मसीह के पास
ले गए. First Timothy chapter 1 verse 8, which we can turn to.
और हम लोग निकाल सकते हैं पहले तिमोथी पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत.
Tells us once again what God's law is used for.
दोबारा से हमें बताती है कि परमेश्वर की व्यवस्था किस बात के लिए इस्तेमाल की जाती है.
First Timothy chapter 1 verse 8 says.
पहले तिमोथी पहला अध्याय उसकी 8 आयत इस प्रकार कहती है.
But we know that the law is good.
हम जानते हैं कि व्यवस्था सही है.
If it is used lawfully.
अगर इसे व्यवस्था की रीति पर काम में लाया जाए तो.
For the purpose for which it was designed.
और जिस कार्य के लिए ये बनाई गई है.
What was the law designed for?
व्यवस्था किस बात के लिए बनाई गई?
Following verse tells us.
दूसरी आयत इसकी जो बताती है इस बात को.
It says the law was not made for the righteous but for sinners.
लिखा ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए लिए नहीं पर अधर्मियों निष्कर्षों.
It even lists the sinners.
परंतु यहाँ के भक्तिहीनों के लिए.
Homosexuals.
और ये पापियों के लिए जो जो.
Fornicators.
ये जो व्यभिचारियों के लिए.
If you want to bring a homosexual to Christ, give them the Ten Commandments.
और ये इन सबको दिया गया है पुष्टगामियों को सबको व्यवस्था दी गई है.
Show them that he has sinned against God.
जितने लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया उन सबको दी गई.
Despite his perversion.
और इन लोगों ने जो अपने गलत काम में चले गए हैं.
If you want to bring a Muslim to Christ,
अगर आप मुस्लिम लोगों को मसीह में लेके आना चाहते हैं तो.
Muslims accept Moses as a prophet.
वो स्वीकार करते हैं कि मूसा एक नबी था.
Well, give them the law of Moses.
उनको मूसा की व्यवस्था दे दो.
And strip them of their self-righteousness.
उनके स्वधर्मिकता से उनको अलग कर दें.
Show them that God requires truth in the inward parts.
और परमेश्वर बताएं उनको कि परमेश्वर आंतरिक सच्चाई को जाता है।
filled with examples.
बाइबल भरी पड़ी इस प्रकार के मिसालों से।
Doing its work in evangelism.
और अगर आप सुसमाचार का प्रचार कार्य करना चाहते हैं तो
Think of the woman caught in the act of adultery.
उस महिला के बारे में सोचो जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी।
The law called for her blood.
और व्यवस्था चाहती कि उसको मार दिया जाए।
Her only avenue was to fling herself at the feet of Jesus.
और उसकी एक ही रास्ता था कि वो मसीह यीशु के चरणों में आ जाए।
And that's the function of God's law.
यही है कार्य है व्यवस्था का।
Paul spoke of being shut up under the law.
और हर एक व्यक्ति जो है व्यवस्था के सामने मुंह बंद कर लेता है।
But you say you can't condemn sinners.
किसी पापी को आप खंडित नहीं कर सकते हैं।
They are already condemned.
वो पहले से खंडित हो चुके दोषी हैं।
He believes not is condemned already. Scripture says.
जो विश्वास नहीं करता है, बाइबल कहती है कि वो पहले से दोषी ठहराया जा चुका है।
Now, normally in this teaching, I go through the Ten Commandments.
और अक्सर इस शिक्षा में मैं 10 हुक्मों से होकर जाता हूँ, 10 आज्ञाओं में से।
But it may be more practical for you.
आपके लिए ज्यादा व्यवहारिक बात होगी।
If I share with you how I share my faith.
और अगर मैं बताऊं कि मैं कैसे अपने विश्वास को बताता हूं।
Now, I'm a strong believer in following the example of Jesus.
मैं एक बहुत मजबूत विश्वासी हूं और यीशु मसीह की अनुसरण करता हूं।
Given to us in John chapter 4.
मेरे साथ खोलते हैं यूहन्ना रचित समाचार उसका 4 अध्याय को।
When Jesus approached the woman at the well.
जब यीशु मसीह उस औरत के पास जाते हैं जो कुएं के पास थी,
He spoke in the natural realm first.
उसने पहले उसे सामान्य बातों से बातें करीं।
So that's what I do.
और वही बात मैं पहले करता हूं।
I go up to someone and say, "Hi, how you doing?"
मैं पहले उस व्यक्ति को कहता हूं, "अरे भाई कैसे हैं?
What do you do for a job?
तुम क्या काम करते हो?"
And then I say, "Did you get one of these?"
तो मैं कहता हूं, क्या आपको ये मिला है आपको?
Maybe I give him a gospel tract.
शायद मैं उनको कोई सुसमाचार का पर्चा देता हूं कभी कभार।
And then I carry in my pocket pennies with the Ten Commandments pressed into them.
तब मेरे जेब में तो बहुत सारे सिक्के हैं जिसमें ऊपर 10 हुक्म अंकित हुए हैं, वो मैं देता हूँ।
But you don't really need one of these. All you need is something Christian.
और आपको वो चीजें नहीं चाहिए, आपको शायद कोई मसीह चीजें चाहिए होगी।
And when they say it's Christian or you say that it's Christian,
और जब वो देखते हैं कि ये मसीह चीजें हैं, तो कहते हैं हाँ मसीह की वस्तु है ये।
You just say, do you think you've kept the Ten Commandments?
और आप पूछते हैं क्या आपके पास 10 हुक्म हैं?
And this is usually what happens.
और ऐसा ही अक्सर होता है।
Oh, pretty much.
हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ा
बहुत। I haven't killed anyone.
मैंने किसी का खून नहीं किया।
I say, have you ever told a lie?
तो मैं पूछता हूँ, क्या कभी झूठ बोला है आपने?
He says, yeah.
कहते हैं, हाँ बोला है।
One or two.
कभी कभार बोलता
है। I say, what does that make you?
और इससे मैं पूछता हूँ, क्या होता है आपको?
He says, a sinner.
कहते हैं, इससे मुझे पापी बना देता है।
I say, more specifically, doesn't it make you a liar?
और क्या इससे आप झूठे नहीं ठहराए जाते?
He says, oh, I'm not a liar.
Oh, कहता है, नहीं, मैं
I said, well, how many lies do you have to tell to be a liar?
तो मैंने पूछता हूँ कि कितनी झूठ बोलने चाहिए एक झूठा ठहराने के लिए?
10 and suddenly a bell rings.
और 10 तब उसकी थोड़ा एक
घंटी बजती है. One lie makes you a liar, isn't that right?
तब उसे पता चलता है कि वो एक झूठा है.
He says, yeah.
बोलता हाँ.
I say, have you ever stolen something?
क्या कभी चोरी करी है?
He says, no.
कहता नहीं.
I say, come on, you've just told me you're a liar.
और अभी आप तो बता रहे हैं कि आपने झूठ बोला है।
They've stolen something even if it's small.
अगर आपने थोड़ी सी भी चोरी करी है तो
Say, yeah.
हाँ, बोलते हाँ करी है।
Say, what does that make you?
और इससे आपको क्या बना देता
है?
बोलते चोर।
Say, do you know Jesus said if you look at a woman and lust after her, you commit adultery with her in your heart?
और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या कहा है कि अगर किसी औरत को आप गलत निगाह से देखते हैं तो इससे आप उसके साथ व्यभिचार कर चुके हैं।
Say, have you ever done that?
तो मैं कहता हूँ क्या आपने कभी ऐसा किया? बोला कई बार करा है।
So from your own admission, you're a lying, thieving, adulterer heart.
और इसलिए अपने खुद के शब्दों से आप कह रहे हैं कि आप झूठ बोलने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं,
and you have to face God on judgment day.
और न्याय के दिन आपको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा।
And we've only looked at 3 of the 10 commandments.
तो हमने तो अभी 3 ही आज्ञाओं को देखा है।
If you hate someone, you commit murder in your heart.
और अगर आप अपने देख सकते हैं कि हृदय में कितने लोगों का खून किया होगा।
And as you go through the commandments,
जब आप आज्ञाओं में से जाएंगे,
they leave us all guilty.
ये सब हमें दोषी ठहरा देती हैं।
And the wonderful thing that happens,
जो अद्भुत काम ये होता है,
is that the work of the law is written in their hearts.
क्योंकि ये जो व्यवस्था की बातें हृदय पे लिखी हैं।
It says in Romans 2 verse 15.
जैसे रोमियो के पत्री 2 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा हुआ है।
It says the conscience bears witness.
कि अंतःकरण हमारे साथ ये इस बात की साक्षी देता है।
Conscience means with knowledge.
और ये जो अंतःकरण का मतलब है कि अंदर का ज्ञान, आंतरिक ज्ञान।
Con means with.
ये जो
science is knowledge.
इसका मतलब है कि ज्ञान जिसे विज्ञान
So whenever he's lied or stolen or lusted,
और चाहे कि हमने चोरी करी है, व्यभिचार करा है, गलत निगाहों से किसी और देखा है,
he's known in his heart, but he's done wrong.
और उसने पता है उसके हृदय में कि उसने गलत किया है.
So on the day of judgment, he will be without excuse.
और इसलिए न्याय के दिन बिना किसी बहाने के होगा.
So the law brings the knowledge of sin.
और इसलिए ये जो व्यवस्था है हमें पाप के ज्ञान को देती है.
You may identify with this, some of you ladies.
अगर मैं आप बहनों में से किसी के साथ अपने आप को जोड़ता हूं तो.
You dust your table down in the morning.
और आप अपने घर में मेज को सुबह साफ करते हैं.
It's a clean table.
अभी ये साफ मेज है.
Then you draw back the curtains.
उसके बाद आप पर्दों को खोल देते हैं.
And let in the early morning sunlight.
सुबह की सूर्य की रोशनी अंदर आने देते हैं.
What do you see on the table?
तब आप उस मेज पे क्या देखते हैं?
Dust.
वो धूल को
What
देखते
do you see
हैं?
In the air?
और जो हवा में आप क्या देखते हैं?
Dust.
ये पूरी धूल
Did
होती
the light
है.
Create the dust?
क्या उस रोशनी से ये धूल
oh,
पैदा
no,
हुई?
The light merely exposed the dust.
नहीं नहीं ये जो रोशनी ने इसने तो उस धूल को दिखा दिया है.
When you and I take the time to draw back the curtains of the Holy of Holies,
अगर आप महापवित्र के उस पर्दों को खोलेंगे समय निकाल कर तो,
it lets the light of God's law shine upon the sinner's heart.
और पापियों के हृदय में परमेश्वर के व्यवस्था
so
की रोशनी पड़ने देंगे.
So he can see himself in truth.
तो आप देखेंगे कि वहाँ पर सच्चाई होगी.
The commandment is a lamp.
और उसका वचन जो है एक रोशनी है.
And the law is light.
और व्यवस्था जो है एक एक
प्रकाश है. That's why Paul says, by the commandment.
पौलुस कहता है कि व्यवस्था के द्वारा
sin became exceedingly sinful.
और ये जो पाप है वो ज्यादा पापी बन गया.
In other words, the law showed him
दूसरे शब्दों में व्यवस्था ने
sin in its true light.
पाप और इसका सही वो जो रोशनी
Someone has this knowledge
ये जो ज्ञान है पाप का
can now understand
अब ये समझता है उस ज्ञान
God
के
God is angry at them.
कि परमेश्वर उससे क्रोधित है.
That his wrath abides upon him.
कि उनके ऊपर क्रोध है.
They can see their weight in the balance.
कि वो एक तराजू में तोले जा चुके हैं.
Of eternal justice.
और अनंत के उस धार्मिकता में.
And found wanting.
और देखा कि वो कम निकले हैं उस तराजू में.
And they can therefore understand.
अब वो समझ सकते हैं ये जो पापी हैं.
Why Jesus had to die.
क्यों यीशु मसीह को मरना पड़ा.
Christ redeemed us from the curse of the law.
और मसीह ने हमें इस व्यवस्था के शराब से छुड़ा दिया है.
Being made a curse for us.
वो हमारे लिए शराब बना.
God commended his love toward us and that while we were yet sinners Christ died for us.
परमेश्वर ने मसीह को हमारे लिए शराब बना दिया जब हम पापी ही थे. मसीह हमारे कारण हुआ और मरा.
We broke the law.
हमने व्यवस्था को तोड़ा.
He paid the fine.
उसने हमारे लिए जुर्माने को भरा.
The moment we repent and accept,
जिस क्षण हम उसे ग्रहण करते हैं, पश्चाताप करते हैं,
what he did on the cross,
जो कुछ उसने क्रूस पर करा है,
we're free from the wrath of God.
हम परमेश्वर के क्रोध से आजाद कर दिए जाते हैं.
Charles
Spurgeon कहते हैं,
the great preacher from 100 years ago,
100 साल पहले बहुत महान प्रचारक
said they'll never accept grace.
पापी जब तक एक पवित्र और न्यायपूर्ण नियम के सामने थर थर नहीं कांपेंगे वे कभी नहीं अनुग्रह को पाएंगे.
They'll never take the cure
वो तब तक नहीं मानेंगे
unless they first convince they have the disease.
तब तक वो दवा को नहीं लेंगे जब तक वो मानेंगे नहीं कि वे बीमार हैं.
The law works.
ये व्यवस्था काम करती है.
It converts the soul.
और ये आत्मा को परिवर्तित कर देती है.
It makes a man a new creature in Christ.
मनुष्य को मसीह में नई सृष्टि बनाती
है. He puts his hand to the plow.
और ये जो कोई उस हल पर हाथ रखता
है. He doesn't look back.
पीछे नहीं देखता है.
Because he's fit for the kingdom.
क्योंकि वो राज्य के लिए योग्य है.
So why don't you find yourself a sinner?
और इसलिए क्यों नहीं आप स्वधर्मियों को ढूंढ लेते?
And experiment on them.
और उन पर तजर्बा करें.
Just try it out.
देखो इसको करके देखें जरा.
See if it works.
देखें काम करता है या
नहीं. Jesus gave the example.
यीशु मसीह ने उदाहरण दी हैं.
Follow it.
उसको पीछा करें.
If someone comes to you and says,
अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है,
I'm just a terrible sinner.
मैं तो बहुत भयानक पापी हूँ.
I've committed adultery.
मैंने व्यभिचार किया है.
I've got lust burning in my heart.
और मेरे हृदय में हमेशा कामना की वासना बातें रहती
है. Filled with jealousy and hatred.
मैं घृणा से वासना से भरा रहता हूँ.
Give them grace.
उनको अनुग्रह दीजिए.
But more than likely,
और इससे ज्यादा भरकर
you find people saying,
अगर लोग कहते हैं,
I'm really a good person.
मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ.
A lot of people worse than me.
बहुत सारे लोग मुझसे बदतर हैं.
They go about to establish their own righteousness.
वो अपने स्वयं की धर्मता स्थापित करते हैं.
Being ignorant of the righteousness which is of God.
परमेश्वर की धर्मता के बारे में अज्ञात रहते हैं.
So you must give them that light.
और उन पर आप रोशनी डालें.
God doesn't want you to get decisions.
परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उनके लिए निर्णय लें, फैसला करें.
He wants people to be saved.
वो चाहता है कि लोग बचाए जाएं.
And for that, they need repentance.
उसके लिए उनको मन फिराना बहुत जरूरी है.
And they will not repent.
वो मन नहीं फिराएंगे.
If they don't know what sin is.
अगर उनको पता नहीं चलेगा कि पाप क्या है.
So as I said.
जैसे मैंने कहा है.
Try it out.
इसको करके देखें.
But as you do.
जैसे आप करते हैं.
Remember this one story.
एक कहानी को आप याद रखिएगा.
You're sitting on a plane.
कि आप एक हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं.
You're enjoying the flight.
आप अपनी उड़ान का लुफ्त उठा रहे हैं.
And suddenly you hear.
अचानक से आप आवाज सुनते हैं.
This is your captain speaking.
ये आपका कप्तान बोल रहा है.
I have an announcement to make.
आपके लिए सूचना करने के लिए है.
As the tail section has just fallen off this plane.
जैसे ही इस जहाज को गिरने वाले पर हम हैं.
We're about to crash.
हम लोग नाश होने वाले हैं.
We're 25,000 feet in the air.
और हवा में हम 25,000 की दूरी में हैं ऊपर.
There's a parachute under your seat.
आपके सीट के नीचे एक पैराशूट है.
So we'd appreciate if you put it on.
आपका बहुत स्वागत किया जाएगा अगर आप इसे पहन लेंगे तो.
Thank you for your attention.
आपके ध्यान के लिए धन्यवाद करते हैं.
And thank you for flying with this airline.
Airlines के साथ चलने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं.
You put your parachute on and say, "Boy, am I glad to be wearing a parachute."
आप अपनी पैराशूट पहन लेते कहते हैं धन्यवाद मेरी सीट के नीचे पैराशूट थी.
You look next to you, the guy next to you is watching the movie.
आपके पास जो बैठा हुआ व्यक्ति वो फिल्म देख रहा है.
Say, excuse me, didn't you hear the captain?
आप कहते हैं माफ करना आपने सुना नहीं कप्तान क्या कह रहे थे?
Put the parachute on.
अपनी पैराशूट पहन लीजिएगा.
He turns to you and says.
वो कहता है.
I really don't think the captain means it.
मैं नहीं सोचता कि कप्तान सही बोल रहा है.
Size, I'm quite happy as I am, thanks.
जो कुछ मैं सोच रहा हूँ मैं अपने मजे में हूँ.
Well, don't turn to him.
उसकी तरफ मुड़कर ये मत कहिए.
And say, please.
कृपया करके.
Put the parachute on.
कृपया ये पहन लीजिए ये पैराशूट.
It'll be better than the movie.
ये मूवी से बेहतर होगा आपके लिए.
It doesn't make sense.
ये बात को समझ में नहीं आती है.
If you tell him to put the parachute on.
अगर आप उसे कहेंगे कि पैराशूट पहन लें.
Because it'll improve the flight.
क्योंकि इससे आपकी उड़ान बेहतर हो जाएगी.
He's going to put it on for a wrong motive.
तब वो गलत मकसद के लिए इसे पहनेगा.
If you want to put it on and keep it on.
अगर आप पहनना चाहते हैं उसे पहने रखना चाहते हैं.
Tell him about the jump.
आप उसको उछलने बारे कूदने के बारे में बताएं.
Excuse me.
अगर माफ कीजिएगा.
Jump without a parachute.
बिना पैराशूट के अगर कूदेंगे तो.
Splat.
बिल्कुल दबाव जाएंगे.
He says, I'm sorry, I beg your pardon.
कहेगा माफ करना मैं आपसे क्षमा मांगता.
I said, if you jump without a parachute.
अगर आप बिना पैराशूट के कूदेंगे यहाँ से हवाई जहाज से तो.
Law of gravity.
ये जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के बाद.
On the ground.
बिल्कुल जमीन पर जा गिरेंगे.
He says, goodness me.
कहेगा बाप रे.
I see what you're saying.
समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हैं.
Oh, thank you very much.
धन्यवाद आपका भाई जान.
And as long as that man knows.
जब तक वो व्यक्ति जानता है.
As long as he has knowledge.
जब तक उसके पास वो ज्ञान है.
But he has passed through the door.
कि उसको उस दरवाजे से निकलना.
And face the consequences.
कि उसको उस नतीजे का सामना करना पड़ेगा.
Of breaking the law of gravity.
कि उस गुरुत्वाकर्षण के कानून का तोड़ना पड़ेगा.
There's no way you're going to get that parachute off his back.
तब वो पैराशूट अपने कंधों पर रखेगा.
Because his very life depends on.
उसका जीवन उस पर निर्भर है.
If you look around, you'll find there are multitudes of passengers enjoying the flight.
आप देखेंगे चारों तरफ जितने भी यात्री हैं वो आनंद उठा रहे हैं अपनी उड़ान का.
They're enjoying the pleasures of sin for a season.
और वो कुछ समय के लिए अपने पाप में खोए हुए हैं लुफ्त उठा रहे हैं.
Excuse me.
आप कहेंगे माफ करना.
Did you hear the command from the captain of our salvation? Put on the Lord Jesus Christ.
क्या आपने उस हुक्म को सुना है कि यीशु मसीह को पहन लें?
He turns to you and says,
वो आपकी तरफ मुड़कर कहता है,
I really don't think God means
it. मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर का ये मतलब है जो कह रहा है.
God is love.
परमेश्वर प्रेम है.
Besides, I'm quite happy as I am, thanks.
जो कुछ मैं सोच रहा हूँ ये बात है.
Don't turn to him with zeal without knowledge.
और बिना ज्ञान के जोश की तरफ मत मुड़े.
Say please.
कहिए कृपया.
Give your heart to
अपना
Jesus.
अपना हृदय यीशु को दे दें.
He'll give you peace, joy, love, fulfillment.
वो आपको आनंद खुशी और भरपूरी देगा.
Fill the God-shaped vacuum in your heart.
परमेश्वर अपने हृदय के खाने पन को भर देगा.
Heal your marriage. Help your alcohol problem.
उसके कोई दारू पीने की समस्या होगी.
Take away your loneliness.
आपकी एकांत पन को ले लेगा, तन्हाई को ले लेगा.
Just give your heart to Jesus.
अपना हृदय यीशु को दे दें.
No, you'll give him a wrong motive for his commitment.
और आप उसको गलत मकसद दे रहे हैं अब उसके समर्पण के लिए.
Instead, say, God, give me courage.
और कहें परमेश्वर मुझे साहस दे.
and tell him about the jump.
कि उसको वो कूदने वाली बात के बारे में बताएं.
Say if you die without the Savior.
कहें कि अगर आप बिना मुक्ति दाते के मर जाते हैं तो.
It's appointed a man wants to die.
ये नियुक्त किया गया है कि इंसान को एक बार मरना.
And after this the judgment.
और परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा.
If you have lusted, you've committed adultery.
अगर आपने व्यभिचार किया है, वासना की भावना आपके अंदर है.
If you've hated someone, you've committed murder.
अगर आपने किसी से नफरत करी है तो आपने हत्या करी है.
If you've told one lie, you're a liar.
अगर आपने एक झूठ बोला है तो आप झूठे हैं.
And the day of wrath.
और क्रोध के दिन.
The fist of eternal justice will come down upon you.
और आप पर वो न्याय गिरेगा.
And grind you to pieces.
आपको पीस के रख देगा.
God bless.
परमेश्वर आपको बरकत दे.
Now I'm not talking about hellfire preaching.
और मैं आपको ये नहीं बता रहा कि नरक की क्या भेद है.
Hellfire preaching will produce fear-filled converts.
क्योंकि नरक के ये प्रचार से लोग डर के मारे आएंगे, डर से भरे होंगे.
Using God's law will produce tear-filled converts.
परमेश्वर की व्यवस्था को इस्तेमाल करने से लोग रोते हुए उसके पास आएंगे.
This one comes merely to escape the fires of hell.
ये व्यक्ति आएगा और नरक की आग से बचने के लिए मुक्तिदाता के पास.
And because the law wasn't used to show him he deserves hell.
क्योंकि व्यवस्था उसको ये बात दिखाई कि वो नरक में जाएगा.
He doesn't appreciate God's mercy.
परमेश्वर की दया की सराहना नहीं कर पाएगा.
There's no gratitude in his heart.
उसके हृदय में कोई धन्यवाद नहीं होगा.
But this one comes knowing he sinned against heaven.
परंतु ये व्यक्ति आएगा कि उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया है.
He's violated the law of a holy God.
और उसने पवित्र परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा है.
And on the day of justice.
और न्याय के दिन.
If God was to lay out all his sins as evidence of his guilt.
और परमेश्वर ये बात बता देगा कि उसने पूरा गुनाह किया है.
Almighty God in his holiness.
परमेश्वर अपने पूरे पवित्रता में.
Could pick him up as an unclean thing.
वो उसकी सारी नापाक बातों को
and cast him into hell.
और उसे नरक में डाल देगा.
But instead he's given him heaven.
परंतु उसके बजाय उसे उसने स्वर्ग दिया है.
He's commanded his love toward him and what is it a sinner Christ died
और
from.
और उसने अपने प्रेम के जरिए से मसीह उसके लिए ला दिया और जो उसके लिए मारा गया.
He falls on his knees.
वो अपने घुटनों के बल गिरेगा व्यक्ति.
In the blood-sodden soil of Calvary's cross.
और उस क्रूस के सामने जो खून से भरी हुई धरती के सामने.
And cries, "Oh God, if you do that for me, I'll do anything for you."
वो परमेश्वर के सामने चलाएगा, कहेगा, प्रभु तू मेरे को माफ करेगा तो मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगा.
He says, "I delight to do your will, oh my God."
प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करने के लिए इच्छा करता हूँ.
Your law is written upon my heart.
तेरा व्यवस्था मेरे हृदय में लिखी हुई है.
And like the man who knew he had to pass through the door.
और ऐसा व्यक्ति जिसको आप दरवाजे से अंदर ले लेते हैं.
And face the consequences of breaking the law of gravity.
और ये जो गुरुत्वाकर्षण के सारे कानूनों को तोड़ देता है.
But never take the parachute off because his very life depends on it.
वो पैराशूट को उतारेगा नहीं क्योंकि पूरा जीवन उसका उस पैराशूट पर निर्भर है.
So he who comes to the Savior.
और इसीलिए जो व्यक्ति उस मुक्तिदाते के पास आ जाता है.
Knowing he has to face a holy God on the day of wrath.
उसे मालूम है कि उस क्रोध के दिन उसे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा.
Never forsake the righteousness of God in Christ.
वो परमेश्वर की सारी धार्मिकता को जो मसीह में है उसे पहन लेगा.
Because his very life depends on it.
क्योंकि उसका पूरी जिंदगी उस धार्मिकता के ऊपर निर्भर है.
Such converts become soul winners.
ऐसे विश्वासी आत्मा को जीतने वाले होते हैं.
Not pew warmers.
ना के कलीसिया की बेंचों को गर्म करने वाले.
Laborers.
और जो काम करने वाले.
Not layabouts.
और ये से नहीं जो काम से जी चुराते हैं.
Assets.
और अलग किए हुए.
Not liabilities.
ऐसे नहीं जो बोझ बन जाते हैं.
For the local church.
स्थानीय कलीसिया के लिए.
Let's bear in prayer as we close.
ये जैसे हम बंद करते हैं प्रार्थना में सिर झुकाएं.
Father, we pray that we'd be as the Bereans.
प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि बिरिया के लोगों के समान हम हो जाएं.
And search the scriptures to see if these things are so.
जो वचन को देखते हैं कि ये बातें सत्य है या नहीं.
And that we'd examine ourselves.
कि हम अपने आप को परखने पाएं.
To see if we're in the faith.
क्या हम उस विश्वास को पहने हुए हैं.
Father, if we're not.
पिता अगर हमने नहीं पहना है तो.
Let us make our calling and election sure.
परंतु आए हम उस अपनी बुलाहट को निश्चित कर लें.
Crying out, God, forgive me, I'm a sinner.
कि प्रभु हमें माफ कर, मैं पापी हूँ, गुनाहगार हूँ.
By exercising repentance towards God,
परमेश्वर के प्रति उस मन फिराव को करने के
faith toward our Lord Jesus Christ,
यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा.
In His name we pray.
उसके नाम से हम प्रार्थना करते हैं.
Amen.
Amen.